ओम आठ करोड़ में मुझे शक्ति वाली चल गई थी। आठ दो अड़सठ बीस इक्कीस के आज में चित्रों की बात चल रही थी। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सदगति होती है। इससे सुनने से सदगति होती है। त्रिमूर्ति शिव से सुनने में सदगति होती है। बाद में तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा से सुनने में सदगति नहीं होती है। ब्रह्मा के तो चार मुख दिखाए जाते हैं। वास्तव में ब्रह्मा की त्रिमूर्ति होती नहीं, शिव की त्रिमूर्ति होती है। और त्रिमूर्ति शिव को ही भगवान कहा जाता है। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सदगति होती है। कृष्ण ने तो गीता सुनाई ही नहीं है। कृष्ण कहो ब्रह्मा कहो, गीता सुनाने वाला वो नहीं है। ऐसे ऐसे पॉइंट पर जब कोई विचार सागर मंथन करे तब ही लिख सके। किसके मुख से डायरेक्ट सुनने से सदगति होती है और किनके मुख से सुनने से दुर्गति होती है। एक के मुख से सुनने से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं के सुनने से दुर्गति होती है। वास्तव में मनुष्य मनुष्य की सदगति कदाचित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो भी मनुष्य मात्र है सब मन वाले हैं। अमन एक भी नहीं है। मन को 100% कंट्रोल करना एक शिव भगवान का ही काम है। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है। एक ही है तो त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? तो तीन मूर्तियां हैं ना, एक मूर्ति कैसे है? एक ही है जो कि टीचर भी है, गुरु भी है और बाप भी है। एक ही रूप में है। तीन रूपों में नहीं है क्या? वास्तव में तीनों ही रूपों से एक रूप में समाये हुए हैं। अब इस पुरुषोत्तम संगम को पर सर्व की सदगति कर रहे हैं। कार्ड में थोड़ी सी फिर लिखत होनी चाहिए बस। ऊपर में लिख देना चाहिए कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसा पावन देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी से आगे आवेंगे समझने के लिए। स सदगति दाता बाप की सिंह जयंती मनाई जाती है। एकदम क्लियर अक्षर हो और तंत में हो, मनुष्य तो भक्ति मार्ग के कितने ढेर शास्त्र पढ़ते हैं, उन ढेर शास्त्रों से कोई की भी आज तक सदगति नहीं हुई। और तुम तो एक कार्ड दिखाने से ही कोई की सदगति कर सकते हो। वो तो शास्त्र पढ़ते रहते हैं, माथा मारते रहते हैं, और यहां तुमको सेकंड में बेहद के बाप से जीवन मुक्ति मिल जाती है। जो बाप का बन और उनसे नॉलेज लेते हैं, किसी से नॉलेज लेते हैं, बाप से नॉलेज लेते हैं, सीधे सीधे नहीं, बाप का बन करके फिर बाप से नॉलेज लेते हैं, उनको जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। मुक्ति में जाकर के फिर जीवन मुक्ति मिलेगी। फिर समय आएगा, जैसा जैसा पुरुषार्थ किया होगा ऐसे ऐसे जीवन मुक्ति में जावेंगे। जीवन मुक्ति तो सबको जरूर मिलती है, कोई को एक जन्म की मिलती है और कोई को 21 जन्म की मिलती है। कोई तो 20 जन्म की, कोई तो 19 जन्म की, कोई तो 2 जन्म की। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जीवन मुक्ति है, परंतु मुक्ति तो सबको एक जैसी मिलती है। शुरू में आए व पिछाड़ी में आवे तो भी सभी को जीवन मुक्ति जरूर मिलती है। सतयुग आज में आवे, कलयुग अंत में आवे, फिर भी मुक्ति सबको जरूर मिलती है। लेकिन जीवन मुक्ति में पद में फर्क पड़ जाता है। पहले जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंधन। जो भी आत्मा बाप के घर से आवेगी, बंध में आवेगी या जीवन मुक्ति में आवेगी, पहले जन्म में हरेक आत्मा को जीवन मुक्ति जरूर मिली है। बाद में भल बंध मन हो जाए तो ऐसी ऐसी बातें अगर धारण कर ले तो भी बहुत सर्विस हो सकती है। कोई कोई को निमंत्रण बहुत अच्छा मिलता है, बच्चियां लिखती हैं हमको बहुत अच्छा रेफरेंस करके गई हो, अभी फिर आकर के रिफ्रेश करो। बुलावा होता है फिर भी अगर न जाए तो उनको कहा जाता है महान कमबख्त। ईश्वरीय सेवा के लिए कभी भी मना नहीं करना चाहिए। सर्विस तो करनी चाहिए ना, सर्विस नहीं करते तो कम वक्त ही कहेंगे। ऊंच दर्जा पाने हैं तो कुछ समझ धारण करनी चाहिए। एक दम में समझ नहीं बन रहे। जो एक दम बेसमझ थर बुद्धि होते हैं वो ईश्वरीय सेवा के लिए मना करते हैं। जाकर के बहुतों का कल्याण करना चाहिए, बाकी सारा दिन खाना पीना सोना ये तो जानवर भी करते हैं। मनुष्य जन्म लेने से क्या फायदा हुआ? और जन्म तो मनुष्य के ही मिलते हैं, जानवरों के जन्म तो मनुष्य को मिलते नहीं है। फिर भी कहा जाता है जानवर बुद्धि, पत्थर बुद्धि। इस समय बाप आकर के जानवर से देवता बनाते हैं। अगर बेहद के बाप को न जाने तो उनको जानवर ही कहेंगे। नहीं जानते हैं तभी तो बेहद के बाप के अवज्ञा करते हैं। ईश्वरीय सेवा के लिए कब इनकार नहीं करना चाहिए? उनको जानवर से भी बदतर कहा जाता है। जानवर भी अपने बाप को पहचानते हैं, यहां तो मनुष्यों की बात है। जरूर कहेंगे इन्होंने बेहद के बाप को नहीं पहचाना है। अगर बाप को जानते हैं तो दूसरों को भी जरूर परिचय दें, क्यों? बेहद का बाप है, बेहद की मनुष्य सृष्टि का बाप, और बेहद की जो भी आत्माएं हैं सब का बाप है। आत्मा मात्र का बाप है, परंतु उसको अपना शरीर नहीं है। तो सेवा करने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। साकार शरीर का आधार चाहिए, नहीं तो जिंदगी कैसे मनुष्य सृष्टि की सेवा करेगी? तो सोचना चाहिए हमारा भी कणा दाना इस साकार शरीर से ही ईश्वरीय सेवा में लग जावे। अगर किसी को परिचय नहीं देते हैं तो जैसे ज्ञान ही नहीं, जैसे जानवर मिसल। समझाने तो बहुत दी जाती है परंतु तकदीर में नहीं है। अगर कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं तो कल्याण करना चाहिए ना। जैसा बाप का खून होगा वो खून बच्चे में देखने में आवेगा ना कि नहीं देखने में आवेगा? यहां तो बाप है सूक्ष्म, गर्भ से जन्म नहीं लेता है, परंतु कल्याणकारी बाप है। बिंदु रूप स्टेज में ही रहकर के कल्याण करता है या शरीर का आधार लेकर कल्याण करता है? आधार लेकर कल्याण करता है तो ईश्वरीय सेवा में सहयोग करना चाहिए ना। नहीं तो बाप भी कहेंगे ये तो कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव के बच्चे तो सब हैं, बिंदु बिंदु आत्माओं के बच्चे, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब हैं। कीटाणु मात्र में भी आत्मा होती है, परंतु वो सर्विस करते हैं क्या? ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं क्या? मनुष्य ही ईश्वरीय सेवा कर सकता है, मनुष्य ही औरों का कल्याण कर सकता है। मनुष्य होकर भी ईश्वरीय सेवा के लिए ना कर दे, उनको शिव बाबा का बच्चा कहेंगे क्या? कल्याण तो करते ही नहीं। शिव माना क्या? कल्याणकारी। तो कीड़े मकोड़ों को शिव के बच्चे कहेंगे क्या? आत्मा तो वो भी है, परंतु क्या करते हैं कीड़े मकोड़े पशु पक्षी? क्या करते हैं? खाना और सोना और तो कुछ नहीं करते। और मनुष्य होकर भी अगर ईश्वरीय सेवा न करे, खाता रहे सोता रहे, तो उसको क्या कहेंगे? जानवरों से भी बदतर है, कोई क्या कल्याण नहीं कर सकते। साहूकार हो गरीब हो, कल्याण तो सबका करना है क्या? साहूकार आ गया तो बड़े दिलो जान से उनको कोर्स देंगे, उनकी बड़ी सेवा करेंगे, खातिरी करेंगे। कोई गरीब आ जावे, देखा कि भीख मांगने वाला है और वो कहने लगे कि हमें भी कुछ समझाओ, तो दूर दूर करके भगा देंगे, तो कहेंगे कि ये बाप के बच्चे आते हैं। रूहानी स्टेज वाले हैं, मनुष्य आत्मा है। यहां तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, मेरे अंदर गरीबों के लिए विशेष रहम है। साहूकार तो अपने ही नशे में रहते हैं, अहंकार रहता है। गरीब ही पहले उठा देंगे, बाप साहूकार निवास बन करके नहीं आता है, नहीं आता है। तथाकथित ब्रह्मा कुमारों से पूछो पहले किसने आता है? साहूकार दादा लेखराज में आता है या गरीब में आता है? क्या कहेंगे? तो कहेंगे साहूकार में आता है। लेकिन मुरली क्या कहती है? मैं गरीब निवाज हूं, गरीबों को आकर के विश्व की बात सही देता हूं। गरीब ही उठा गई, गरीबों को बहुत फुर्सत रहे। ईश्वरीय ज्ञान सुनने की और सुनाने की साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं, उनका ड्रामा में पार्ट ही ऐसा बना हुआ है, ऐसा कि मुख से निकलेगा हमको ज्ञान के लिए, ज्ञान की सेवा के लिए या कोई भी ईश्वरीय सेवा के लिए फुर्सत ही हो सके ही नहीं। ये सहंकार अभी अगर आ जावे तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जावे, देखेंगे। ये भी कहते हैं गीता का भगवान निराकार शिव है, साकार कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, तो कुछ विचार करेंगे। एक भगवान ही सदगति जाता है, समझ जावेंगे, फिर आकर के पूछ लटकावेंगे। अभी ही अगर मेहमान निकल जावे तो पता नहीं क्या हो जावे। बात मत पूछो, तुम तो सन्यासी हो, बड़े बड़े मर्तबे वालों को हिलाते हो, क्योंकि तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा। तुम खुद हिलते हो या बड़ों बड़ों को हिलाते हो? खुद हिलते तो कहेंगे अनिश्चय बुद्धि, बड़े बड़े मर्तबों वालों को हिलाते हो तो उसका शास्त्रों में क्या कहेंगे? रावण की सभा में अंगद ने अपना पांव जमा दिया, ये बुद्धि रूपी पांव की निशानी है, निश्चय बुद्धि की निशानी है। दुनिया डोल जाए और दुनिया तुमको हिलावे, लेकिन तुम अपने बुद्धि रूपी पांव से डगमगाए नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा ईश्वरीय मर्तबा है। उनके आसुरी मर्तबे हैं, उनका क्या मर्तबा है? आज मर्तबे वाले कल हाथ फेल हो जाएगा, कुछ भी मर्तबा नहीं। जो अच्छी रीति समझते हैं वो अपना भी तो दूसरों का भी कल्याण करते हैं, जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो दूसरों का कदाचित कल्याण नहीं कर सकते। बात तो अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु अच्छी रीति समझाने के बावजूद भी कोई कोई ये ज्ञान रतन मिर्ची जैसी लगती है। क्या बात? है वही बाण, रावण को घाव कर देते हैं और राम के बुद्धि रूपी तर्कस में भरे रहते हैं। एक बाण भरा रहता है कि अनेक भरे रहते हैं? अनेक बाण भरे रहते हैं, कोई के लिए सुखदाई और कोई के लिए दुखदाई बन जाते हैं। बात तो कल्याणकारी है और सर्व का कल्याणकारी है, मना सर्व का कल्याणकारी है, कीड़े मकोड़ों पशु पक्षियों का भी कल्याणकारी है क्या? जब मनुष्य आत्मा सुधरती है तो मनुष्य आत्मा के बुद्धियों से सारा वातावरण सुधर जाता है, और वातावरण के सुधरने से सारे ही पशु पक्षी प्राणी आदि सुधर जाते हैं। तो सर्व का सदगति दाता है, तुम भी उस एक बात के मददगार हो। अभी तुम समझते हो वो है भक्ति मार्ग की दशा, और सदगति मार्ग की दशा तो एक ही होती है। वो महारथी कहेंगे जिनकी सदगति मार्ग की दशा है, अपने दिल से पूछना चाहिए हम महारथी हैं, फलाने मिशन सर्विस करते हैं। जो प्यादे होंगे वो कब किसी को ज्ञान सुनाई नहीं सकेंगे। कोई का कल्याण कर नहीं सकेंगे। तो फिर कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए? बाप तो पुरुषार्थ करावेंगे ना, पुरुषार्थ करावेंगे या स्वार्थी बनावेंगे? पुरुषार्थ करते हैं तो बाप के बच्चे, पुरुषार्थी माना ही आत्मा के अर्थ करने वाला, जो भी वाणी बोले आत्मा के अर्थ, जो भी कर्म इंद्रिय करता से कर्म करे आत्माओं के कल्याण के अर्थ, जो भी संकल्प चलावे आत्माओं के कल्याण के अर्थ। तो कहेंगे कल्याणकारी बाप का बच्चा, बाप अपने बच्चों को ठंडा थोड़ा ही छोड़ेंगे। अगर उनको ठंडा छोड़ने तो और भी डिसर्विस करेंगे। इस ज्ञान यज्ञ की सर्विस में तो हड्डियां भी स्वाहा कर देनी चाहिए, बाकी सिर्फ खाना पीना सोना, ये क्या सेवा हुई? समझना चाहिए हम जाए प्रजा में जावेंगे। राजाई में तो आने की बात नहीं दिखाई पड़ती, या तो दास दासी बनेंगे। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करके नर से नारायण बनो, सपूत बच्चों को देख करके बाप भी खुश होंगे। आज फरवरी 1968 की वाणी का तीसरा दिन, बाप खुश होंगे देखेंगे ये तो बड़ा सपूत बच्चा है। लौकिक बाप भी देखते हैं ये तो बड़ा मर्तबा पाने लायक है, तो बाप को देख करके खुशी होगी ना। पारलौकिक बाप भी ऐसे ही करते हैं, बाप बच्चों को अगर न सुधारे तो लोग कहेंगे तुम्हारा तो कोई धन दूरी नहीं है। वेद का बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं, अभी तुम औरों को भी बनाओ, बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से फायदा क्या होगा? सिर्फ ये बताओ ये बात बतावेंगे तो बुद्धि चलेगी और स्वभाव ज्ञान करो। भोजन करते समय भी शिव बाबा की याद दिलाते रहेंगे तो सभी कहेंगे इनको तो शिव बाबा से बहुत प्यार है। اتنا تو سہل ہے, اتنا کرنے میں کیا نقصان ہے؟ پھر ٹیڑھ پڑ جاتی تھی تو کھاتے بھی رہیں گے, ادھن بھی کرتے رہیں گے, دیوی گن دھارن کرنا چاہیے. باپ کا, ٹیچر کا, گرو کا کام تو ہے شکشا دینا, اور تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. گائن بھی ہے, مارو چاہے پیار کرو. اور بابا تو اسے تن سے ہی کہیں گے نا, وہ تو گپت ہے, پرنتو ان کا بھی ادب رکھنا پڑے. ان کا ان کا مانے کن کا, اور اس کا مانے کس کا؟ اس کا مانے صرف برہما, اور ان کا مانے برہما اور باپ, دونوں کا ادب رکھنا پڑے. اس سمے کلیوی پتت کوڑی مشن درگتی کو پائیں گے. سبھی پکارتے ہیں ہے پتت پاون آؤ, تو ضرور پتت ہے نا. شنکراچاریہ بھی شیو کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ شیو ہی پتت پاون ہے. آدھا کلپ بھکتی کرتے ہیں, پھر بعد میں بھگوان آتے ہیں. کوئی کوئی سے حساب کا پتہ نہیں ہے. باپ سمجھاتے ہیں, بھکتی سے ہی درگتی ہوتی ہے. تریسٹھ جنم بھکتی کرتے کرتے درگتی کو پایا ہے. بھکتی ایک سے آتی ہے یا انیکوں سے آتی ہے؟ انیکوں سے آتی ہے بھکتی, اور ایک سے آتا ہے گیان. تو انیکوں سے ہوئی درگتی, اور ایک سے ہوتی ہے سدگتی. شاستر میں بتائے ہوئے یگیہ تپ دانا آدی کرنے سے بھی میں نہیں ملتا ہوں. یگ کرتے رہے, کون سی یگ کیے؟ میٹیریل یگ کیے یا گیان یگ کیا؟ گیان کا تو کوئی تو پتا ہی نہیں ہے. جو شاستروں میں پڑھا ہے, سنا ہے, وہ سناتے رہتے. اور شاستر تو انپڑھ منشیوں کے دوارا لکھے ہوئے, جو منشیوں میں شاستر لکھے ہیں ان سے سدگتی کیسے ہو سکتی ہے؟ سدگتی تو گیتا کا بھگوان ہی کرے گا یا منشی کرے گی؟ تو میٹیریل یگی کرتے رہتے ہیں, تپ کے نام پر الٹے لٹک جاتے ہیں, ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم تپسیا کرتے ہیں. باپ کہتے ہیں یہ تو ہٹھی یوگ ہے, دان کرتے ہیں, سمجھتے ہیں دان کرنا بڑی اچھی بات ہے. پرنتو دیتے کس کو ہے؟ پتتوں کو دیتے ہیں. اگر پتتوں کو دیتے ہیں تو پتت بنیں گے یا پاون بنیں گے؟ پتت ہی بنیں گے. تو باپ کہتے ہیں یہ تپ دپ تپ جپ دان پنیہ آدی کرنے سے میں نہیں ملتا ہوں. اس میں گیتا بھی آ جاتی ہے. وہ گیتا منشیوں کی لکھی ہوئی ہے, और उसमें नाम डाला हुआ है गीतापति भगवान के रूप में मनुष्य का। कैसे का नाम डाल दिया? वैसे तो सोलह कला संपूर्ण देवता है, भगवान तो नहीं है। और कृष्ण को भी बनाने वाला कोई देवता है या भगवान है? भगवान कृष्ण को बनाता है। कृष्ण को सत्युग में जन्म देने वाला रचयिता बाप भगवान तो नहीं होगा, भले टाइटल धारी होगा। क्या भगवान भगवती का टाइटल मिलता है लक्ष्मी नारायण को, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान तो आते हैं तो आप समान बना करके जाते हैं। तो इन शास्त्रों से पढ़ने से कोई की सदगति नहीं हो सकती। सदगति तो सत्य बात से होगी या झूठी बातों से होगी? सत्य से ही सतयुग की स्थापना होती है। झूठे शास्त्र सुनने से झूठ खंड की स्थापना हो जाती है। सत्य एक ही सुनाता है और बाकी सब असत्य सुनाते हैं। गीता, वेद, उपनिषद ये सब भक्ति मार्ग के हैं। क्यों? जो गीता मिल रही है वो भी मनुष्यों ने लिखी हुई है, मनुष्य नहीं। उसमें साकार कृष्ण का नाम डाला हुआ है। जो वेद लिखे हुए हैं वो भी वेद व्यास के लिखे हुए हैं, सुनाए हुए हैं। भगवान ने तो नहीं सुनाए। उपनिषद आदि वो सब वेदों की व्याख्याएं हैं जो मनुष्यों के द्वारा की गई है। तो ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। बाप तो सदगति के लिए बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं। जिस ज्ञान और योग से तुम राजा ही प्राप्त करते हो। भगवान जो प्राप्ति कराते हैं वो प्राप्ति तो दुनिया में कोई नहीं करा सकता। राजाई देने की पढ़ाई किसी ने भी नहीं पढ़ाई। भगवान आते हैं तो राजाओं का राज्य स्थापन करते हैं। मनुष्य ने तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य लेकर के राज्य स्थापन कर दिया। भगवान जो पढ़ाते हैं इसका नाम ही है सहज राजयोग। मनुष्य से देवता बनाते हैं, इसमें पुस्तक आदि की भी बात नहीं है। पुस्तकों में तो बंधा हुआ ज्ञान होता है। भगवान जो ज्ञान सुनाते हैं उसको कागजों में बांधा नहीं जा सकता। ज्ञान है क्या? सारे जंगल की कलम बनाओ और सारी कलमें लिखते लिखते घिस डालो। सारे सागर की स्याही बनाओ और लिख लिख के सारे सागर की स्याही सुखाए दो, तो भी ईश्वरीय ज्ञान खलास होने वाला नहीं है। इतना विस्तार तो पाता है। पुस्तकों में ये ज्ञान कैसे बांधा जा सकता? टीचर तो स्टडी कराते पद प्राप्त कराने के लिए। तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। सबको बोलो शिव बाबा को याद करो। वो हम सभी आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगी क्या? और कोई भी महान से महान मनुष्य को याद करेंगे तो पाप कर्म विनाश नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जैसा संग करेंगे वैसा ही बनेंगे। इस दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब विपरीत कर्म करने वाले हैं। 100% श्रीमत क्या होती है, भगवान बाप क्या होता है? जो भगवान कहते हैं मैं जो हूं और जैसा हूं और जिस रूप में पाठ बजाता हूं वो और कोई भी नहीं जानते। बाप खुद आकर के अपना परिचय देते। मनुष्य मात्र तो भगवान का परिचय दे भी नहीं सकता। उस एक को याद करने से ही पाप कर्म विनाश होंगे, एक दो को सावधान करके उन्नति को पाना है। इस बात में सावधानी देनी है, है? अरे किसके परचिंतन में लगे हुए हो? परचिंतन पतन की जड़ है। इसकी शिकायत उसकी शिकायत, इससे करना उससे करना, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक बाप आया हुआ है, सबका सदगति दाता आया हुआ है। याद की यात्रा ही सारे विश्व को पंच बनाएगी। जितना ही याद करेंगे उतना अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। याद में रहे भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। ये तुम्हारी ब्रह्मा भोजन की महिमा है। ऐसा भोजन शायद पिछाड़ी में मिलेगा है? अभी नहीं मिलेगा। अभी क्यों नहीं मिलेगा? पिछाड़ी में क्यों मिलेगा?
पूरा
है
वास्तविक।
हाँ अभी भी घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि और घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि होने लग पड़ती है। अनिश्चय बुद्धि हुए तो किसके ऊपर अनिश्चय बुद्धि हो गई?
बाप के ऊपर।
बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि हुए तो बाप के रथ के ऊपर भी अनिश्चय आ जाता है। फिर ब्रह्म भोजन कहां रहा? जैसे बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करके भोजन बनाओ, वो भक्त लोग भोजन बनाते हैं तो भी राम राम कहते रहते हैं। मुख से राम राम कहते रहते हैं, राम की महिमा करते हैं, परंतु राम ने आकर क्या किया, कब किया, सो कुछ भी नहीं जानते। राम नाम का दान देते हैं ना, अब नाम का दान देने से क्या होगा? नाम कब बनता है? जब कोई ने काम किया हो तो उसका नाम होता है। जरूर राम ने वो काम किया होगा जो दुनिया में और कोई ने नहीं किया है, तो राम नाम का इतना दान देते हैं। तुमको तो बुद्धि में ये घड़ी घड़ी याद रहना चाहिए क्या कि राम का ऑक्यूपेशन क्या है, राम का धंधा क्या है। बुद्धि में सारा ज्ञान याद रहना चाहिए। बाप के पास सारी रचना के आदि पर्यंत का ज्ञान है ना। ऊंचते ऊंच भगवान, ऐसे ऊंचते ऊंच को याद करेंगे तो उच्च पद पा देंगे। जितना परसेंटेज में उसे एक ऊंचते ऊंच को याद करेंगे उतना ऊंचते ऊंच पद पा देंगे, और बीच में नीचते नीचे भी याद आते रहे तो पद में घाटा पड़ेगा ना। कोई तो सारा दिन झरमुई झगमुई करते रहते, जब एक ऊंचते ऊंच मिल गया, उसकी पहचान मिल गई, तो फिर दूसरे किसको याद क्यों करे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो दूसरी सब बातें छोड़ देनी पड़े। ये है अभिविचारी योग। और जिससे अभिविचारी योग लगाना है, जिसकी अभिविचारी याद करनी है, तो ज्ञान भी कोई दूसरों से सुनेंगे क्या? ज्ञान भी एक से सुनेंगे, अभिविचारी ज्ञान हो जाएगा। बाप ने समझाया है, अगर याद नहीं आता है तो गांठ बांध लो। अपनी उन्नति करने के लिए, उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। टीचर तो एक ही है, हमको टीचर बनाने वाला शिव बाबा है। तुम पंडे हो, पंडों का काम है रास्ता बताना, नहीं तो तुम पंडे नहीं हो, लंबे हो। लंबे क्या होता है? लूटमार करने वाले होते हैं ना, डकैत। उनको ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे। जो लूटमार करते हैं वो शूद्र हैं। उनका काम है नीचते नीचे। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़े तुम्हारे पास में था। ऐसे बहुत कहते हैं आगे तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी, तो जरूर होगा। ब्राह्मानुसार कल्प पहले मिसल पढ़ते रहते, फिर कल्प बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे। जिस रफ्तार से अभी पढ़ते हैं उसी रफ्तार से कल्प के बाद भी पढ़ाई पढ़ेंगे। रोज बाबा समझाते रहते हैं, परंतु अगर बुद्धि में छेद होगा तो सब कुछ पढ़ाई लिखाई समझानी बहती जाएगी। छेद क्या होता है? छेद होगा तो जरा भी कोई को ज्ञान दे न सकेंगे, सारा बह जाएगा। कहीं से निमंत्रण आता है तो फौरन ईश्वरीय सेवा में दौड़ना चाहिए। सेवा करने के लिए और दान करने के लिए पूछने की तो बात ही नहीं, पूछना भी नहीं चाहिए। परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं? पिछाड़ी में तुमको साफ साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी थोड़ी लगती है। बाबा को तो हद से साक्षात्कार होते हैं। ये फलाना राजा बनेगा, इनकी ये ड्रेस होगी। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे। वो आदमी तुरंत में भी होंगे, फिर पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाबा भी कहेंगे तुमको कितना समझाते थे, तुमने नहीं माने। है तो ड्रामा, फिर भी समाधान दिया जाता है, सावधान किया जाता है, फिर उनकी पत्नी अच्छा मीठे मीठे सिटी के बच्चों के लिए बाप दादा का याद किया गुड मॉर्निंग।